दाम्पत्य प्रेम का दृश्य भी गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर दिखाया है, पर बड़ी ही मर्यादा के साथ। नायिका भेद वाले कवियों का सा या कृष्ण की रासलीला के रसिकों का सा लोक मर्यादा का उल्लंघन उसमें कहीं नहीं है। सीताराम के परम पुनीत प्रणय की जो प्रतिष्ठा उन्होंने मिथिला में की, उसकी परिपक्वता जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं के बीच पति पत्नी के संबंध की उच्चता और रमणीयता संघटित करती दिखलाई देती है। अभिषेक के स्थान पर राम को वन जाने की आज्ञा मिलती है। आनंदोत्सव का सारा दृश्य करुण दृश्य में परिणत हो जाता है। राम वन जाने को तैयार हैं और वन के क्लेश बताते हुए सीता को घर रहने के लिए कहते हैं। इस पर सीता कहती हैं, वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना, कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई, कंद मूल फल अमीह आहारु, अवध सौध सत सरिस पहारु, मोहि मग चलत न होई ही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, पाय पखारी बैठ तरु छाही, करिहो बाव मुदी मन माही, बार बार मृदु मूरति जोही, लागी ताति बयारी न मोही। दुख की परिस्थिति में सुख की इस कल्पना के भीतर हम जीवन यात्रा के शांत पथिक के लिए प्रेम की शीतल सुख छाया देखते हैं। यह प्रेम मार्ग निराला नहीं है, जीवन यात्रा के मार्ग से अलग होकर जाने वाला नहीं है। यह प्रेम कर्म क्षेत्र से अलग नहीं करता, उसमें बिखरे हुए कांटों पर फूल बिछाता है। राम जानकी को नंगे पांव चलते देख ग्रामवासी कहते हैं, जो जगदीश इनहि बन दीन्हा, कस न सुमन मैं मार्ग कीन्हा। थोड़ी दूर साथ चलकर उन्होंने जान लिया होगा कि उनका मार्ग सुमनमय ही है। प्रेम के प्रभाव से जंगल में भी मंगल था। सीता को तो सहस्त्रों अयोध्याओं का सुख वहां मिल रहा था। नाह नेह नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहती दिवस झिमे कोकी, सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा, परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनि तिय मुनिवर, असन अमीय सम कंद मूल फर। अयोध्या से अधिक सुख का रहस्य क्या है? प्रिय के साथ सहयोग के अधिक अवसर। अयोध्या में सहयोग और सेवा के इतने अवसर कहाँ मिल सकते थे? जीवन यात्रा की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति वन में अपने हाथों से करनी पड़ती थी। कुटी छाना, स्थान स्वच्छ करना, जल भर लाना, ईंधन और कंदमूल इकट्ठा करना इत्यादि वहाँ के नित्य जीवन के अंग थे। ऐसे प्राकृतिक जीवन में प्रेम का जो विकास हो सकता है वह कृत्रिम जीवन में दुर्लभ है। प्रिय के प्रयत्नों में ऐसे ही स्वाभाविक सहयोग की अभिलाषिणी एक ग्रामीण नायिका कहती है, आगी लागी घर जरीगा, बड़ सुख कीन, प्रिय के हाथ घैलवा, भरी भरी दीन। दूसरा कारण इस सुख का था हृदय का प्रकृति के अनेक रूपों के साथ सामंजस्य, जिनके प्रभाव से कुरंग विहंग अपने परिवार के भीतर जान पड़ते थे। उससे जगत जननी जानकी का हृदय ऐसा न होगा तो और किसका होगा, जिसके एक स्थान पर लगाए हुए फूल पौधों को छोड़कर अन्य स्थान पर जाते हुए भी दुख होता था। सीता जी द्वारा श्रृंगार के संचारी भाव व्रीड़ा की व्यंजना के लिए कैसा उपयुक्त अवसर चुना गया है। वन के मार्ग में ग्रामीण स्त्रियां राम की ओर लक्ष्य करके सीता से पूछती हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं। इस पर सीता, तिन्ही बिलोकी बिलोकति धरणी, दुह संकोच सकुचित बर बरनी। बिलोकति धरणी कितनी स्वाभाविक मुद्रा है। दुह संकोच द्वारा कवि ने सीता के हृदय की कोमलता और अभिमान शून्यता भी कैसे ढंग से व्यंजित कर दी है। एक तो राम को खुले शब्दों में अपना पति कहने में संकोच, दूसरा संकोच यह समझकर कि यदि इन भोली भाली स्त्रियों को कोई उत्तर न दिया जाएगा तो ये मन में दुखी होंगी और मुझे अभिमानिनी समझेंगी। इसके आगे सीता जी में श्रृंगार चेष्टाओं का विधान भी अत्यंत निपुणता और भावुकता के साथ गोस्वामी जी ने किया है। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह कर बाकी, खंजन मंजु तिरीछे नय नैनी, निज पति कहे तिन्ही सिय सैननी। यदि आम रास्ते पर राम के साथ बातचीत करने में ये चेष्टाएं दिखाई जाती तो कुल वधु की मर्यादा भंग होती और कोई विशेष निपुणता की बात न होती। रूढ़ी का अनुसरण मात्र होगा, पर बीच में उन स्त्रियों के डाल देने से एक पर्दा तो खड़ा हो गया और अधिक स्वाभाविकता भी आ गई। सीता में ये चेष्टाएं अपने साथ राम के संबंध की भावना द्वारा उत्पन्न दिखाई पड़ती हैं। यदि राम सीता के परस्पर व्यवहार में ये चेष्टाएं दिखाई जाती तो संभोग श्रृंगार का खुला वर्णन हो जाता, जो गोस्वामी जी ने कहीं नहीं किया है। अब प्रश्न यह है कि ये चेष्टाएं अनुभव होंगी या विभावांतर्गत हाव। हिंदी के लक्षण ग्रंथों में हाव प्राय अनुभव के अंतर्गत रखे मिलते हैं, पर यह ठीक नहीं है। अनुभव के अंतर्गत केवल आश्रय की चेष्टाएं आ सकती हैं। आश्रय की चेष्टाओं का उद्देश्य किसी भाव की व्यंजना करना होता है, पर हावों का सन्निवेश किसी भाव की व्यंजना कराने के लिए नहीं होता, बल्कि नायिका का मोहक प्रभाव बढ़ाने के लिए अर्थात उसकी रमणीयता की वृद्धि के लिए होता है। जिसकी रमणीयता या चित्ताकर्षकता का वर्णन या विधान किया जाता है वह आलंबन होता है। अतः हाव नामक चेष्टाएं आलंबन गत ही मानी जाएंगी, और आलंबन गत होने के कारण उनका स्थान विभाव के अंतर्गत ही ठहरता है। अब विचार करना चाहिए कि सीता जी की उक्त चेष्टाएं अनुभव होंगी या हाव। लक्षण के अनुसार संभोग इच्छा प्रकाशक भ्रू नेत्रादि विकार ही हाव कहलाते हैं, पर सीता जी के विकार इस प्रकार के नहीं हैं। ये विकार राम के साथ अपने संबंध की भावना से उत्पन्न हैं और उनके प्रति प्रेम की व्यंजना करते हैं। इस प्रकार आश्रय की चेष्टाएं होने के कारण ये विकार अनुभव ही होंगे। सीता हरण होने पर इस प्रेम को हम एक ऐसे मनोहर क्षेत्र का द्वार खोलते हुए पाते हैं, जिसमें बल और पराक्रम अपनी चरमावस्था को पहुंचकर अनीति और अत्याचार का ध्वंस कर देता है। वन में सीता का वियोग चारपाई पर करवटें बदलने वाला प्रेम नहीं है, चार कदम पर मथुरा गए हुए गोपाल के लिए गोपियों को बैठे बैठे रुलाने वाला वियोग नहीं है, झाड़ियों में थोड़ी देर के लिए छिपे हुए कृष्ण के निमित्त राधा की आंखों से आंसुओं की नदी बहाने वाला वियोग नहीं है, वह राम को निर्जन वनों और पहाड़ों में घुमाने वाला, सेना एकत्र कराने वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला वियोग है। इस वियोग की गंभीरता के सामने सूरदास द्वारा अंकित वियोग अतिशयोक्ति पूर्ण होने पर बाल क्रीड़ा सा लगता है। हनुमान के प्रकट होने के पहले जानकी उद्विग्न होकर कह रही थी, पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी, सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। इतना कहते ही हनुमान की मुद्रिका गिराना और सीता का उसे अंगार समझकर हाथ में लेना, यह सब तो गोस्वामी जी ने प्रसन्न राघव नाटक से लिया है। हनुमान को सामने पाकर सीता उसी मर्यादा के साथ अपने वियोग जनित दुख की व्यंजना करती है, जिस मर्यादा के साथ माता पुत्र के सामने कर सकती है। वे पहले अनुज सहित राम का, अकेले राम का नहीं, कुशल पूछती हैं, फिर कहती हैं, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होइ हहि निरखि श्याम मृदुगाता। प्रिय के कुशल मंगल के हेतु व्यग्रता भारतीय ललनाओं के वियोग का प्रधान लक्षण है। प्रिय सुख में है या दुख में है, यह संशय विरह में दया का करुण भाव का हल्का सा मेल कर देता है। भारत की कुल वधु का विरह आवारा आशिकों माशुकों का विरह नहीं है, वह जीवन के गंभीर को लिए हुए रहता है। यह वह विरह नहीं है जिसमें विरही अपना ही जलना और मरना देखता है। प्रिय मरता है कि जीता है, इससे कोई मतलब नहीं। पवित्र दाम्पत्य रति की कैसी मनोहर व्यंजना उन्होंने सीता द्वारा उस समय कराई है, जिस समय ग्राम वनिताओं ने मार्ग में राम को दिखाकर उनसे पूछा था कि ये तुम्हारे कौन हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे, सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुसुकानी, तिनहि बिलोकि बिलोकत धरनी, दुह संकोच सकुचति बरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी, सहज सुभाय सुभग तन तोरे, तन गोरे नामु लखनु लघु देवर मोरे, बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पिय तन चितय भौह करि बाकी, खंजन मंजु तिरिछ नयननी, निज पति कहयो तिन्हि सिय सयननी। कुल वधु की इस अल्प व्यंजना में जो गौरव और माधुर्य है वह उद्धत प्रेम प्रलाप में कहा। शोक का चित्रण भी गोस्वामी जी ने अत्यंत हृदय द्रावक पद्धति से किया है। शोक के स्थल तुलसी वर्णित रामचरित में दो हैं, एक तो अयोध्या में राम वन गमन का प्रसंग और दूसरा लंका में लक्ष्मण को शक्ति लगने का। राम के वन जाने पर जो दुख फैला वह शोक ही माना जाएगा, वह प्रिय का प्रवास जन्य दुख मात्र नहीं है। अभिषेक के समय वनवास बड़े दुख की बात है। कह कह नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पन कीन्ह, जेहि रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। अतः परिजनों और प्रजा का दुख राम की दुख दशा को समझकर भी था, केवल राम का अलग होना देखकर नहीं। राम चलत अति भय विषादु, सुनि न जाए पुर आरत नादु। यह विषाद और यह आरत नाद शोक सूचक है। प्रिय के दुख या पीड़ा पर जो दुख हो वह शोक है। प्रिय के कुछ दिनों के लिए वियुक्त होने मात्र का जो दुख हो वह विरह है। अतः राम के इस दुखमय प्रवास पर जो दुख लोगों को हुआ वह शोक और वियोग दोनों है। तुलसी राम वियोग शोक बस समुझत नहीं समुझाए में वियोग और शोक सूचक वाक्य यद्यपि मिले हुए हैं, पर हम चाहें तो उन्हें अलग करके भी देख सकते हैं। शुद्ध वियोग, जब जब भवन बिलोकति सुनो, तब तब विकल होती कौसल्या। दिन दिन प्रति दुख दूनो, को अब प्रात कलेऊ मांगत, रूठ चले गो माई, श्याम तामरस नयन स्रवत, जल काही लेऊ उरलाई। शोक या करुणा की व्यंजना इस प्रकार के वाक्यों में समझिए। मृदु मूरति सुकुमार सुभाउ, ताति बाउ तन लाग न काऊ, ते वन बसहि विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस सहि छाती। राम सुना दुख कान का काऊ, जीवन तरु जिम जोग वही राहु, ते अब फिरत विपिन पदवारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दशरथ के मरण पर यह शोक अपनी पूर्ण दशा पर पहुंच जाता है। उस समय के अयोध्या की दशा के वर्णन में पाठकों की करुणा की ऐसी धारा दिखलाई पड़ती है जिसमें पूर्ववासियों के साथ वे भी मग्न हो जाते हैं। लागति अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहि एक ही एक निहारी, घर मसान परिजन जनभूता, सुत हित मीत मनहु जमजूता जमदूता, बागन बिटप बेली कुमिलाही, सरित सरोवर देख न जाही, विधि कह कई किरात निकीन्ही, जही दव दुसह दसहू दिशिधीन्ही। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी, करी विलाप सब रो वही रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनि विलाप दुखहु दुख त्यागा, दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भागा। गोस्वामी जी द्वारा चित्रित राजकुल का यह शोक ऐसा शोक है जिसके भागी केवल पुरवासी ही नहीं मनुष्य मात्र हो सकते हैं, क्योंकि यह आलंबन के प्रति है। जिसके थोड़े से भी दुख को देख मनुष्य कहलाने वाले मात्र न सही तो मनुष्यता रखने वाले सब करुणार्द्र हो सकते हैं। दूसरा करुण दृश्य लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप है। इस विलाप के भीतर शोक की व्यंजना अत्यंत स्वाभाविक रीति से की गई है। उसके प्रवाह में एक क्षण के लिए नियम व्रत दृढ़ता सी बही जाती सी दिखाई देती है। जो जनतेउ बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेउ नहीं ओहु। भाव दशा का तात्पर्य न समझने वाले, नीति के नाम पर पाखंड धारण करने वाले इसे चरित्र ग्लानी समझेंगे या कहेंगे, पर ऐसे प्रिय बंधु का शोक जिसने एक क्षण के लिए भी विपत्ति में साथ न छुड़ा, यदि एक क्षण के लिए सब बातों का विचार छुड़ा देने वाला न होता तो राम के हृदय की वह कोमलता कहाँ दिखाई पड़ती जो भक्तों की आशा का अवलंबन है। वह कोमलता, यह सहृदयता सब प्रकार के नियमों से परे है। नियमों से निराश होकर कर्मवाद की कठोरता से घबराकर परोक्ष ज्ञान और परोक्ष शक्ति मात्र से पूरा पड़ता न देखकर ही तो मनुष्य परोक्ष हृदय की खोज में लगा और अंत में भक्ति मार्ग में जाकर उस परोक्ष हृदय को उसने पाया। भक्त लोगों का ईश्वर अविचल नियमों की समष्टि मात्र नहीं है, वह क्षमा दया उदारता इत्यादि का अनंत समुद्र है। लोक में जो कुछ क्षमा दया उदारता दिखाई देती है वह उसी समुद्र का एक बिंदु है। आत्मग्लानि का जैसा पवित्र और सच्चा स्वरूप गोस्वामी जी ने दिखाया है वैसा शायद ही किसी कवि ने कहीं दिखाया हो। आत्मग्लानि का उदय शुद्ध और सात्विक अंतःकरण में भी हो सकता है, अतः भरत से बढ़कर उपयुक्त आश्रय उसके लिए और कहाँ मिल सकता है। आत्मग्लानि नामक मानसिक शैथिल्य या तो अपनी बुराई का अनुभव अपने आप करने से होता है अथवा किसी बुरे प्रसंग के साथ अपना संबंध लोक में दिखाई पड़ने से उत्पन्न हीनता का अनुभव करने से। भरत जी को ग्लानि थी दूसरे प्रकार की, पर सच्ची और गहरी थी। जिन राम का उन पर इतना गाढ़ा स्नेह था, जिन्हें वे लोकोत्तर श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते आए, उनके विरोधी वे समझे जाएं, यह दुख उनके लिए असह्य था। इस दुख के भार से हल्के होने के लिए वे छटपटाने लगे। इस घोर आत्मग्लानि को वे हृदय में न रख सके। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरी मा तुझे हिलागी। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। ये रह रहकर सोचती हैं कि लाख अपनी सफाई दूं, पर लोक की दृष्टि से निष्कलंक नहीं दिखाई पड़ सकता। जौपे हो मातु मते मह वह हो, तो जननी जग में या मुख की कहां कालिमा ध्वय हो। क्यों हो आज हो तो सुचि सपतनी, कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच विशिषण बाची। गही न जाती रसना काहू की, कहो जाही जो सूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, कौन ही है की बूझे। कैकई को सामने पाकर इसे ग्लानी के साथ अमर्ष का संयोग हो जाता है। उसकी पवित्रता के सामने माता के प्रति यह अवज्ञा कैसी मनोहर दिखाई पड़ती है। क जो पै कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे सिमोही। पेड़ काटी तय पालव सीचा, मीन जियन हित बाहरी उलीचा। जबते कुमति कुमत जी उठयउ, खंड खंड होई हृदय न गयउ। बर मांगत मन भई न पीरा, गरी न जीह मोह परेउ न कीरा। असको जीव जंतु जग माही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भे अति अहित राम तेउ तोही, को तू अहसि सत्य कहु मोही। ख ऐसे तय क्यों वचन कयोरी, राम जाहु कानन तेरे कैसे धौ हृदय रहोरी। दिनकर वंश पिता दशरथ से, राम लखन से भाई। जननी तू जननी तो कहा कहा, विविध के ही खोर न लाई। हो लही हो सुख राज मातु है, सुत सिर छत्र धरेगो। कुल कलंक मल मूल मनोरथ, तव बिनु कौन करेगो। एह राम सुखी सब है हैं, ईस अजस मेरो हरि हैं। तुलसीदास मोको बड़ो सोच, तू जन्म कौन विधि भरी हैं। एक बार तो संसार की ओर देखकर भरत जी अयश छूटने से निराश होते हैं, पर फिर उन्हें आशा बंधती है और कैकेयी से कहते हैं कि ईश मेरा तो अयश हरेंगे, मैं तो मुंह दिखाने लायक हो जाऊंगा, पर तू अपने दिन कैसे काटेगी। वे समझते हैं कि राम के आते ही मेरा अयश दूर हो जाएगा। उनको विश्वास है कि सारा संसार मुझे दोषी माने, पर सुशीलता की मूर्ति राम मुझे दोषी नहीं मान सकते। परिहरी राम सीय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। राम की सुशीलता पर भरत को इतना अविचल विश्वास है। वह सुशीलता धन्य है जिस पर इतना विश्वास टिक सके, और वह विश्वास धन्य है जो सुशीलता पर इस अविचल भाव से जमा रहे। भरत की आशा का एकमात्र आधार यही विश्वास है। कौशल्या के सामने जिन वाक्यों द्वारा वे अपनी सफाई देते हैं, उनके एक एक शब्द से अंतःकरण की स्वच्छता झलकती है। उनकी शपथ उनकी अंतर्वेदना की व्यंजना है। जे अघ मातु पिता गुरु मारे, गाय गोठ महिसुर पुर जारे। जे अघतिय बालक बध कीन है, मीत महीपति माहुर दीन है। जे पातक उपपातक अहही, कर्म बचन मन भव कवि कहही। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यह होई मोर मत माता। इस सफाई के सामने हजारों वकीलों की सफाई कुछ नहीं है। इन कसमों के सामने लाखों कसमें कुछ नहीं है। यहाँ वह हृदय खोलकर रख दिया गया है, जिसकी पवित्रता को देख जो चाहे अपना हृदय निर्मल कर ले। हास्य रस का एक अच्छा छींटा नारद मोह के प्रसंग में मिलता है। नारद जी बंदर का मोह लेकर स्वयंवर की सभा में एक राजकन्या को मोहित करने बैठे हैं। काहू न लखा सुचरित बिसेखा, सा सरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जे ही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उस कहीं अकुलाही, देखि दशा हरगन मुसुकाही। गोस्वामी जी का यह हास भी मर्यादा के साथ है। स्मित हास है और बड़े लोगों का हास है, उस पर भी उद्देश्य गर्भित है। निराहास ही हास नहीं है, यह मोह और अहंकार छुड़ाने का एक साधन है। इसके आलंबन का स्वरूप भी विदूषकों का सा कृत्रिम नहीं है। हास के अतिरिक्त बाल विनोद की सामग्री देखनी हो तो सुंदर कांड में एक लंबी पूंछ के बंदर को पूंछ में लुक बांध कर नाचते हुए और राक्षसों के लड़कों को ताली बजा बजा कर कूदते हुए देखिए। थोड़ी देर वहीं ठहरने पर ऐसा भयानक और विभत्स कांड देखने को मिलेगा जो भुलाए न भूलेगा। कवितावली में लंका दहन का बड़ा ही विस्तृत और पूर्ण चित्रण है। देखिए कैसा आवेग पूर्ण भय है। क लगी लागी आगी, भागी भागी चले जहां तहां। धिया को नमाए बाप पूत न संभा रही। छूटे बार बसन उघारे धूम धुंध अंध कहे बारे बूढ़े बारी बारी बार बरही। हय ही नाथ भागे जात घहरात गज भारी भीड़ ठेली पेली रौंदी खौंदी डारही। नाम ले चिलात बिलेलात अकुलात अति तात तात तौसियत झोंसियत झारही। ख लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी धूम अकुलाने पहिचाने कौन काही रे। पानी को ललात बिलेलात जरे गात जात परे पाई माल जात भ्रात तू निबाही रे। प्रिया तू पराही नाथ नाथ तू पराही बाप बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहाल कहें लेही दस शीस अब बीस चख चाही रे। इसी लंका दहन के भीतर यह विभत्स कांड सामने आता है। हाट बाट हाटुक पिघिल चलो घी सो घनो कनक कराही लंक तलफति तायसो। नाना पकवान जातु धान बलवान सब पागी पागी ढेरी किन्हीं भली भाति भायसो। पिशाचिनियों और डाकिनियों की विभत्स क्रीड़ा का जो कवि प्रथानुसार वर्णन है वह तो है ही। जैसे ओझरी की झोरी कांधे आतिन की सेली बांधे मूड़ के कमंडलु खपर किए कोरी कै जोगिनी झुटंग झुंड झुंड बनी तापसीसी तीर तीर बैठी सो समर सरी खोरी कै शोणित सो सानी सानी गूदा खत सतुआ से प्रेत एक पियत बहोरी घोरी घोरी कै। तुलसी बैताल भूत साथ लिए भूत नामु हेरी हेरी हसत है हाथ हाथ जोरी कै। कवायत की पूरी पाबंदी के साथ बहुत थोड़े से रौद्र रस का उदाहरण देखना हो तो यह देखिए। भाषे लशन कुटिल भई भौ हैं रदपट फरकत नयन रिसौ हैं रघुबंसिन महजह को होई तेही समाज अस कहे न कोई। इसमें अनुभव भी है अमर्ष संचार भी है। संभव है कुछ लोगों को रिसौ हैं शब्द के कारण शब्द स्वशब्द वाच्यत्व दोष दिखाई पड़े पर अनुभाव आदि द्वारा पूर्ण व्यंजना हो जाने पर विशेषण रूप में भाव का नाम आ जाना दोष नहीं कहा जा सकता। युद्धवीर के उदाहरणों से तो सारा लंका कांड भरा पड़ा है। उत्साह नामक भाव की भी व्यंजना अत्यंत उत्कर्ष को पहुंची हुई है और युद्ध के दृश्य का चित्रण भी बड़ा ही उग्र और प्रचंड है। वीर रस का वर्णन कौशल उन्होंने तीन शैलियों के भीतर दिखाया है। प्राचीन राजपूत काल के चारणों की छप्पे वाली ओजस्विनी शैली के भीतर इधर के फुटकरीय कवियों की दंडक वाली शैली के भीतर और अपनी निज की गीतिका वाली शैली के भीतर नीचे तीनों का क्रमशः एक एक उदाहरण दिया जाता है। क कतहु विटप भूधर उपारी परसेन बरसपत कतहु बाजिसो बाज मर्दि गजरात करशत चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत बिकट कटक बिद्दरत बीरु बारिदु जिमि गच्छत लंगूर लपेटत पटकी भट जयति राम जय उच्चरत तुलसी से पवन नंदनु अटल युद्ध क्रुद्ध कौतुक करत। दो दबकी दबोरे एक बारिधि में बोरे एक मगन मही में एक गगन उड़ात हैं पकरी पछारे कर चरण उखारे एक चीरी फारी डारे एक मीझी मारे लात हैं तुलसी लखत राम रामनु विबुध विधि चक्र पानी चंडीपति चंडिका सिहात हैं बड़े बड़े बानई तबीर बलवान बड़े जातु धान जूता पर निपाते बात जात हैं। तीन भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसमसी कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजात सब मारुत ग्रसे मंदोदरी उर कंप कंपित कमट भू भूसुर त्रसे चक्कर ही दिग्गज दसन गही मही देखी कौतुक सुर हसे। धनुष चढ़ाने के लिए राम और लक्ष्मण का उत्साह और धनुर्भंग की प्रचंडता का वर्णन भी अत्यंत वीरोल्लासपूर्ण है। जनक के वचन पर उत्तेजित होकर लक्ष्मण कहते हैं सुनहु भानुकुल कमल भानु जो अब अनुशासन पावो का बापुरो पिनाक मेलिगुन मंदर मेरु नवावो। देखो निज किंकर को कौतुक क्यों को दंड चढ़ावो ले धावो भंजो मृणाल ज्यो तो प्रभु अनुज कहावो। धनुष टूटने पर डिगति उर्वि अति गुर्वि सर्व पब्बे समुद्र सर ब्याल बधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर दिग्गयंद लरखरत परत दसकंठ मुख भर सुर विमान हिम भानु भानु संघटित परस्पर चौके बिरंचि संकर सहित कोल कमट अहि कल मल्यो ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जब रावण शिवधुन दल्यो। धनुर्भंग के इस वर्णन में प्रश्न यह उठता है कि इसमें प्रदर्शित उत्साह का आलंबन क्या है। प्रचलित साहित्य ग्रंथों में देखें तो युद्धवीर का आलंबन विजय तव्य ही मिलेगा। यह विजेतव्य शत्रु या प्रतिपक्षी ही हुआ करता है, अतः यहाँ विजेतव्य धनुष ही हो सकता है। पर पृथ्वी पर पड़ा हुआ जड़ धनुष मनुष्य के हृदय में उठाने या तोड़ने का उत्साह किस तरह जागृत करेगा, यह समझते नहीं बनता है। वह तो पड़ा पड़ा ललकार नहीं रहा है। यदि किसी मनुष्य में इतना साहस और बल है कि वह बड़ी बड़ी चट्टानों को उठा सकता है, तो पहाड़ पर जाकर उसकी क्या दशा होगी। अतः हमारे समझ में उत्साह का आलंबन कोई विकट या दुष्कर्म कर्म ही होता है। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम की व्याकुलता देख कार्य तत्परता की मूर्ति हनुमान कहते हैं, जो हम अब अनुशासन पावों, तो चंद्रमही निचोरी चल ज्यो आनी सुधा सिर नावों, कै पाताल दलो व्यालावली अमृत कुंड मही लावों, भेद भुवन करी भानु बाहिरो तुरत राहु दैतावों, विबुद बैद बरबस आनो धरी तो प्रभु अनुज कहावो, पटको मीच नीच मूषक ज्यो सभी को पायो बहावो। हनुमान के इस विरोत्साह का आलंबन क्या है, क्या चंद्रमा अश्विनी कुमार इत्यादि, खैर इसका विस्तृत विवेचन अन्यत्र किया जाएगा। यहाँ इतना ही निवेदन करके रसज्ञों से क्षमा चाहते हैं। अब अद्भुत रस का एक उदाहरण देकर यह प्रसंग समाप्त किया जाता है। हनुमान जी पहाड़ हाथ में लिए आकाश मार्ग से अपूर्व वेग के साथ बढ़े जा रहे हैं। लीनो उखारी पहाड़ विशाल चल्यो, ते ही काल विलंब न लायो, मारुत नंदन मारुत को मन को, खगराज को बेगुल जायो, तीखी तुरा तुलसी कहतो पहिए, उपमा को समाव न आयो, मानो प्रत्यक्ष पर्वत की न भलीक लसी, कपियो धुकी धायो। इस पद के भीतर मारुत को, मन को, खगराज को इस वाक्यांश में कुछ दुष्क्रमत तो प्रतीत होता है। मन को सबके पीछे होना चाहिए, मन का वेग जब कह चुके तब खगराज का वेग उसके सामने कुछ नहीं है। पर समग्र वर्णन से जो चित्र सामने खड़ा होता है उसके अद्भुत होने में कोई संदेह नहीं। गगन मंडल के बीच पहाड़ की एक लीक सी बंध जाना कोई साधारण व्यापार नहीं है। इस अद्भुतता की योजना भी एक स्वाभाविक सिद्ध व्यापार के आधार पर हुई है और प्रकृति का निरीक्षण सूचित करती है। यह सूचित करती है कि अत्यंत वेग से गमन करती हुई वस्तु की एक लकीर सी बन जाया करती है। इस बात पर कवियों की दृष्टि गई है। जिसकी दृष्टि ऐसी बातों पर न जाती हो वह कवि कैसा। प्रकृति के नाना रूपों को देखने के लिए कवि की आँख खुली रहनी चाहिए, उसका मृदु संगीत सुनने के लिए उसके कान खुले रहने चाहिए। अद्भुत रस के इस आलंबन द्वारा गोस्वामी जी की यह स्वाभाविक विश्व व्यापार ग्राहिणी सहृदयता लक्षित होती है, जो हिंदी के और किसी कवि में नहीं। इस स्वभाव सिद्ध अद्भुत व्यापार के सामने कमल पर कदली, कदली पर कुंड, शंख पर चंद्रमा आदि कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध रूपकातिशयोक्ति के कागजी दृश्य क्या चीज हैं, लड़कों के खेल हैं। बालकों या बाल रुचि वालों का मनोरंजन उनसे होता हो तो हो सकता है। गोस्वामी जी ने अपने इस परिष्कृत और गंभीर रुचि का परिचय अलंकारों की योजना में बराबर दिया है। लंका दहन में जहाँ हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ इधर से उधर घुमाते हैं, वहाँ अपनी उत्प्रेक्षा और संदेह को ये इसी स्वभाव सिद्ध व्यापार पर टिकाते हैं। बालधि विशाल विकराल जाल जाल मानो, लंक लीलीवे को काल रसना पसारी है, कैंधो व्योम बीथिखा भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सो उघारी है। ध्यान से देखिए तो कई एक व्यापार जो देखने में केवल अलौकिक तत्व विधायक प्रतीत होते हैं, हेतु प्रेक्षा के व्यंग से अपना प्रकृत स्वरूप खोल देंगे। पथिक वेश में राम लक्ष्मण वन के मार्ग में चले जा रहे हैं। क्षमा कीजिए, यह दृश्य हमें बहुत मनोहर लगता है, इसी से बार बार सामने आया करता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, तहाँ तहाँ मेघ करहि नभ छाया। जिस समय मेघ खंड आकाश में बिखरे रहते हैं उस समय पथिक के मार्ग में कभी धूप पड़ती है कभी छाया। इस छाया पड़ने को देखकर किसी अवसर पर यदि कभी किसी साधारण पुरुष को भी कह दे कि मेघ भी आपके ऊपर छाया करते चलते हैं, तो उसका यह कहना अस्वाभाविक न लगेगा। इस कथन द्वारा जिस प्रताप आदि की व्यंजना इष्ट होगी वह उत्प्रेक्षा का हेतु हो जाएगा। प्राचीन कवियों में इस प्रकार की सुंदर स्वाभाविक उक्तियाँ अक्सर मिलती हैं, जिनमें से किसी किसी को लेकर उन पर एक साथ कई प्रौढ़ोक्तियाँ लाद कर पिछले खेवे के कवियों ने एक भद्दी इमारत खड़ी की है। फल इसका यह हुआ कि उनमें अतिशयोक्ति रह गई है, जो कुछ स्वाभाविकता थी वह जान लेकर भागी है। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतल में भौरा शाकुंतला का पीछा किए हुए है और बार बार उसके मुँह की ओर जाता है। सलिल सेंस भमुगदो रोमालियम उज्जीय वयन ये महुअरो अविहट्टई। हमारे लाला भिखारी दास ने इस उक्ति को पकड़ा और उसके ऊपर यह भारी भरकम ढांचा खड़ा कर दिया। आनन है अरविंद न फूले अलीगन, भूले कहाँ मंडरात हो, कीर कहाँ तो ही बाई भई भ्रम, बिंब के ओठन को ललचात हो। दासु जु ब्यालिन बेन रची तुम, पापी कलापी कहाँ इतरात हो, बोलत बाल न बाजत बीन, कहाँ सिंगरे मृग घेरत जाती हो। ऐसे संकट में पड़ी हुई नायिका शायद ही कहीं दिखाई पड़े। भ्रमर बाधा तक तो कोई चिंता की बात नहीं, पर उनके ऊपर यह शुक बाधा, मयूर बाधा और मृग बाधा देख तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे ही रहना पड़ेगा। बहुत लोगों ने देखा होगा कि भौरे आदमी के पीछे अक्सर लग जाते हैं, कान और मुंह के पास मंडराया करते हैं, हटाने से जल्दी हटते नहीं। इसी बात पर स्त्रियों में यह प्रवाद प्रचलित है कि जब कोई परदेश में होता है तब उसका संदेशा कहने के लिए भौरे आकर कान के पास मंडराया करते हैं। अतः इस प्रकार की उक्तियों में जो सौंदर्य है वह हमें अतिशयोक्ति में न दिखाई देकर स्वभाव सिद्ध वस्तु द्वारा व्यंग हेतु प्रेक्षा में दिखाई पड़ता है। जैसे भौरा जो बार बार मुंह के पास जाता है वह मानो मुख को कमल समझने के कारण। छोटे छोटे संचारी भावों की स्वतंत्र व्यंजना भी गोस्वामी जी ने जिस मार्मिकता से की है उससे मानवीय प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण प्रकट होता है। उन्होंने ऐसे भावों का चित्रण किया है जिनकी ओर किसी कवि का ध्यान तक नहीं गया है। संचारियों के भीतर वे गिनाए तो नहीं गए हैं, फिर ध्यान जाता कैसे। सीता के संबंध में राम लोग ध्वनिचरों के द्वारा सुनते हैं। चर्चा चरणी सो चरसी जान मनी रघुराई, दूत मुख सुनी लोक धुनी घर घरनी बूझी आई। मर्यादा स्तंभ राम लोक मत पर सीता को वन में भेज देते हैं। लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि आश्रम में छोड़ आंखों में आंसू भरे लौट रहे हैं। इस अवसर पर दीन बंधु दयाल देवर देखी अति अकुलानी, कहत वचन उदास तुलसी दास त्रिभुवन रानी। ऐसे अवसर पर सीता ऐसी गंभीर हृदय देवी का यह उदासीन भाव प्रकट करना कितना स्वाभाविक है। तोलों बल आपुही की भी विनय समुझी सुधारी। जौलो हो सिखी लेऊ बन, ऋषि रीति बसी दिन चारी। तापसी कही कहा पठवती, नृपनी को मनुहारी। बहुरी तिहि विधि आई कही है, साधु कोई हितकारी। लसन लाल कृपाल निपटही डारी भी न बिसारी, पालवि सब तापसनी ज्यो राज धर्म बिचारी। सुनत सीता वचन मोचत सकल लोचन बारी, वाल्मीकि न सके तुलसी सो स्नेह संभारी। काव्य के भाव विधान में जिस उदासीनता का सन्निवेश होगा वह खेद व्यंजक ही होगा, यथार्थ में उदासीनता न होगी, उसे विषाद शोभ आदि से उत्पन्न क्षणिक मानसिक शैथिल्य समझिए। कैकेयी को समझाते समय मंथरा के मुख से भी उस उदासीनता की व्यंजना गोस्वामी जी ने बड़ी मार्मिकता से कराई है। राम के अभिषेक पर दुख प्रकट करने के कारण जब मंथरा को कैकेयी बुरा भला कहती है तब वह कहती है, हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। को नृप होऊ हमहि का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। हिंदी कवियों में तुलसी ऐसे भावुक के सिवा इस गूढ़ भाव तक और किसकी पहुंच हो सकती है, और कौन ऐसे उपयुक्त पात्र में और ऐसे उपयुक्त अवसर पर इसका विधान कर सकता है। इस उदासीनता के भाव का आविष्कार उन्हीं का काम था। सूरदास ने इसका कुछ आभास मात्र यशोदा के उस संदेशे में दिया है जो उन्होंने कृष्ण के मथुरा चले जाने पर देवकी के पास भेजा था। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। आश्चर्य को लेकर कविजन अद्भुत रस का विधान करते हैं जिनमें कुतूहल वर्धक बातें हुआ करती हैं, पर इस आश्चर्य से मिलता जुलता एक और हल्का भाव होता है जिसे कोई और अच्छा नाम न मिलने के कारण चकपकाहट कह सकते हैं और आश्चर्य के संचारी के रूप में रख सकते हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने दोनों में भेद किया है। आश्चर्य किसी विलक्षण बात पर होता है, ऐसी बात पर होता है जो साधारणता नहीं हुआ करती। चकपकाहट किसी ऐसी बात पर होती है जिसकी कुछ भी धारणा हमारे मन में न रही हो और जो एकाएक हो जाए, जैसे किसी दूर देश में रहने वाले मित्र को सहसा अपने सामने देखकर हम चकपका उठते हैं। राम का सेतु बांधना सुन रावण चकपका कर कहता है, बांधे बन निधि नीर निधि जलधि सिंध वारिस, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। यह ऐसी ही बात है जैसा सहसा किसी का मरना सुनकर चकपका कर पूछना, अरे कौन, राम प्रसाद के बाप, माता प्रसाद के लड़के, शिव प्रसाद के भाई, अमुक स्टेट के मैनेजर। इस भाव का प्रत्यक्षीकरण भी यह सूचित करता है कि गोस्वामी जी सब भावों को अपने अंतःकरण में देखने वाले थे, केवल लक्षण ग्रंथों में देखकर उनका सन्निवेश करने वाले नहीं। दूसरों का उपहास करते तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, पर कभी आपने मनुष्य की उस अवस्था पर भी ध्यान दिया है जब वह पश्चाताप और ग्लानिवश अपना उपहास आप करता है? गोस्वामी जी ने उस पर भी ध्यान दिया है। उनकी अंतर्दृष्टि के सामने वह अवस्था भी प्रत्यक्ष हुई है। सोने के हिरण के पीछे अपनी सोने की सीता को खोकर राम वन वन विलाप करते फिरते हैं। मृग उन्हें देखकर भागते हैं और फिर जैसा कि उनका स्वभाव होता है थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। इस पर राम कहते हैं, हम ही देखे मृग निकर पराही, मृग कहही तुम कह भय नाही, तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। कैसी शोभपूर्ण आत्मनिंदा है। यहाँ एक और बात ध्यान देने की है, कवि ने मृगों के ही भय का क्यों नाम लिया, मृगियों के भय का क्यों नहीं? बात यह है कि आखेट की यह मर्यादा चली आती है कि मादा के ऊपर अस्त्र न चलाया जाए। शिकार खेलने वालों में यह बात प्रसिद्ध है। यहाँ गोस्वामी जी का लोक व्यवहार परिचय प्रकट होता है। देखिए, श्रम की व्यंजना किस कोमलता के साथ गोस्वामी जी करते हैं। सीता राम लक्ष्मण के साथ पैदल वन की ओर चली है। एक, पुरते निकसी रघुबीर वधु, धरी धीर दय मगमे डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी झलकी, पुट सूखी गए मधुरा धरवय, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कित भय, तियकी लखी आतुरता पियकी, अखियां अति चारु चली जलचय। दो, जल को गए लखनु है लरिका, परिखो पिय छाह घरी कवठाड़े, पोछी पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारी हो बुभूरी ढाड़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लोकंटक काढ़े, जानकी नाह कुनेहु लख्यो, पुलको तनुबारी बिलोचन बाढ़े। कुल वधु के श्रम की यह व्यंजना कैसी मनोहर है। यह श्रम स्वतंत्र है, किसी और भाव का संचारी होकर नहीं आया है। गोस्वामी जी को मनुष्य की अंतः प्रकृति की जितनी परख थी उतनी हिंदी के और किसी कवि को नहीं। कैसे अवसर पर मनुष्य के हृदय में स्वभावतः कैसे भाव उठते हैं इसकी वे बहुत सटीक कल्पना कर लेते थे। राम के अयोध्या लौटने पर सुग्रीव और विभीषण ने राम और भरत का मिलना देखा, तब उनके चित्त में क्या होगा यह देखिए। सघन चोर मग मुदित मन, ध्वनि गही ज्यों भेंट, त्यों सुग्रीव विभीषण ही भई भरत की भेंट। रास्ते भर तो वे बहुत प्रसन्न आए होंगे और राम के साथ रहने के कारण अपने को गौरवशाली, शायद साधु और सज्जन भी समझते रहे होंगे। पर यह महत्व उनका निज का अर्जित नहीं था, केवल राम की कृपा से मिला हुआ था। वे उसे अपना अर्जित समझते आ रहे थे, यह उनका भ्रम था। उनका यह भ्रम राम और भरत का मिलना देखकर दूर हो गया। वे ग्लानी में पड़ गए। उनके मन में आया कि एक भाई भरत है और एक हम लोग हैं जिन्होंने अपने भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार किया। बस दो बातें और कहनी हैं। कवि लोग अर्थ और वर्ण विन्यास के विचार से जिस प्रकार शब्द शोधन करते हैं उसी प्रकार अधिक मर्म स्पर्शी और प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करने के लिए व्यापार शोधन भी करते हैं। बहुत से व्यापारों में जो अधिक प्राकृति होने के कारण स्वभावतः हृदय को अधिक स्पर्श करने वाला होता है, भावुक कवि की दृष्टि उसी पर जाती है। यह चुनाव दो प्रकार से होता है, कहीं तो चुना हुआ व्यापार उपस्थित प्रसंग के भीतर ही होता है या हो सकता है, और कहीं चुना हुआ व्यापार प्रस्तुत व्यापार से सादृश्य रखता है, जैसे अन्योक्ति में। गोस्वामी जी ने दोनों प्रकार के चुनाव में अपनी स्वाभाविक हृदयता दिखाई है। प्रथम पद्धति का अवलंबन ऐसी स्थिति को अंकित करने में होता है जिसके अंतर्गत बहुत से व्यापार हो सकते हैं और सब व्यापारों का वाच्य एक सामान्य शब्द हुआ करता है, जैसे अत्याचार, दैन्य, दुख, सुख इत्यादि। अत्याचार शब्द के अंतर्गत डांटने डपटने से लेकर मारना पीटना, जलाना, स्त्री बालकों की हत्या करना न जाने कितने व्यापार समझे जाते हैं। इसी प्रकार दीन दशा के भीतर खाने पहनने की कमी से लेकर द्वार द्वार फिरना, दांत निकालकर मांगना, किसी के दरवाजे पर अड़कर बैठना और हटाने से भी न हटना, ये सब गोचर दृश्य आते हैं। इन दृश्यों में जो सबसे अधिक मर्म स्पर्शी होता है, भावुक कवि उसी को सामने रखकर उसी को सबका उपलक्षण बताकर स्थिति को हृदयंगम करा देता है। गोस्वामी जी ने अपने दयनीय भाव का चित्रण स्थान स्थान पर इसी पद्धति से किया है। कुछ उदाहरण लीजिए। कहाँ न कियो कहाँ न गयो, शीश काहि नायो, हाहा करी दीनता कही, द्वार बार बार परि न छार मुह बायो, महिमा मान प्रिय प्राण ते तजी, खोली खलन आगे खिनु खिनु पेट खलायो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुलसीदास जी सचमुच द्वार द्वार पेट खलाते और डांट फटकार सुनते फिरा करते थे। कहीं राजा राम के द्वार पर खड़े अपनी दीनता का चित्र आप देखते हैं। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। सारी विनय पत्रिका का विषय यही है, राम की बड़ाई और तुलसी की छोटाई। दयनीय भाव जिस उत्कर्ष को गोस्वामी जी में पहुंचा है, उस उत्कर्ष को और किसी भक्त कवि में नहीं। इस भाव रहस्य से अनभिज्ञ और इस उपलक्षण पद्धति को न समझने वाले ऊपर के पदों को देख यदि कहें कि तुलसीदास जी बड़े भारी मंगन थे, हटाने से जल्दी हटते नहीं थे और खुशामदी भी बड़े भारी थे, तो उनका प्रतिवाद करना समय नष्ट करना ही है। खेद इस बात पर अवश्य होता है कि स्वतंत्र आलोचना का ऐसा स्थूल और भद्दा अर्थ समझने वाले भी हमारे बीच वर्तमान हैं। एक स्थान पर गोस्वामी जी कहते हैं, खीजीबे लायक करतब कोटि कोटि कटु, रीझीबे लायक तुलसी के निलज जई। इस पर यदि कोई कह दे कि तुलसीदास जी बड़े भारी बेहया थे, तो उसकी क्या दवा है। तुलसीदास जी को जब स्वामी के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता की इस प्रकार प्रतीति हो जाती है कि जानत जहान मन मेरे ही गुमान बड़ो, मान्यो मैं न दूसरो न मानत न मानी हो, तब प्रेमाधिक्य से वे कुछ मुंह लगे हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे बातें भी कह देते हैं, हाँ अब लो कर तू तिहारी या चितवत, तो न रावरे चेते, अब तुलसी पुत्रो बांध है सही न जात, मोपे परिहास एते। पर ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करते कि आपने कर्म भव निधि पार करो जो तो हम करतार करतार तुम काहे के। देखिए संसार की अशांति का चित्र कैसा मर्म स्पर्शी और प्राकृतिक जीवन व्यापार उपलक्षण के रूप में चुनकर वे अंकित करते हैं। डांसत ही गई बीती निशा सब, कतहू न नाथ नींद भरी सोयो, प्रस्तुत व्यापार के स्थान पर उसी के सादृश्य अप्रस्तुत व्यापार चुनने में भी गोस्वामी जी ने प्रभावोत्पादक प्राकृतिक दृश्यों की परख का पूर्ण परिचय दिया है। प्रेम भाव का उत्कर्ष दिखाने के लिए उन्होंने चातक और मीन को पकड़ा है। दोहावली के भीतर चातक की अन्योक्तियां प्रेमी भक्तों के हृदय का सर्वस्व है। यही चातकता और मीनता वे जीवन भर चाहते रहे। करुणा निधान बरदान तुलसी चहत, सीतापति भक्ति सुरसरी नीर मीनता। अन्योक्ति आदि के लिए भी वे तत्काल हृदय में चुभने वाला दृश्य लाकर खड़ा कर देते हैं। इससे प्रस्तुत विषय के संबंध में जो भाव उत्पन्न होता है वह थोड़ी देर के लिए अवश्य उत्पन्न होता है। प्रसादों में सुख से रहने वाली सीता वन में कैसे रह सकेंगी। नव रसाल वन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। शील निरूपण और चरित्र चित्रण रस संचार के आगे बढ़ने पर हम काव्य की उस उच्च भूमि में पहुंचते हैं जहां मनोविकार अपने क्षणिक रूप में ही न दिखाई देकर जीवनव्यापी रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसी स्थायित्व की प्रतिष्ठा द्वारा शील निरूपण और पात्र का चरित्र चित्रण होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस उच्च भूमि में आने पर फुटकरिये कवि पीछे हट जाते हैं, केवल प्रबंध कुशल कवि ही दिखाई पड़ते हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि गोस्वामी जी को छोड़ हिंदी का और कोई पुराना कवि इस क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ता। चारण काल के चंद आदि कवियों ने भी प्रबंध रचना की है, पर उसमें चरित्र चित्रण को वैसा स्थान नहीं दिया गया है। वीरोल्लास ही प्रधान है। जैसी आदि मुसलमान कवियों की प्रबंध धारा केवल प्रेम पथ का निदर्शन करती गई है। दोनों प्रकार के आख्यानों में मनोविकारों के इतने भिन्न भिन्न प्रकृतिस्थ स्वरूप नहीं दिखाई पड़ते जिन्हें हम किसी व्यक्ति या समुदाय विशेष का लक्षण कह सकें। रस संचार मात्र के लिए किसी मनोविकार की एक अवसर पर पूर्ण व्यंजना ही काफी होती है, पर किसी पात्र में उसे शील रूप में प्रतिष्ठा करने के लिए कई अवसरों पर उसकी अभिव्यक्ति दिखानी पड़ती है। रामचरितमानस के भीतर राम, भरत, लक्ष्मण, दशरथ और रावण कई पात्र ऐसे हैं जिनके स्वभाव और मानसिक प्रवृत्ति की विशेषता गोस्वामी जी ने कई अवसरों पर प्रदर्शित भावों और आचरणों की एक रूपता दिखाकर प्रत्यक्ष की है। पहले राम को लीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि प्रधान पात्र होने के कारण जितनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनका जीवन दिखाया गया है और किसी पात्र का नहीं। भिन्न भिन्न मनोविकारों को उभारने वाले जितने अधिक अवसर उनके सामने आए हैं उतने और किसी पात्र के सामने नहीं। लक्ष्मण भी प्रत्येक परिस्थिति में उनके साथ रहे, इससे उनके संबंध में भी यही कहा जा सकता है। सारांश यह है कि राम लक्ष्मण के चरित्रों का चित्रण आख्यान के भीतर सबसे अधिक व्यापक होने के कारण सबसे अधिक पूर्ण है। भरत का चरित्र जितना अंकित है उतना सबसे उज्ज्वल, सबसे निर्मल और सबसे निर्दोष है, पर साथ ही यह भी है कि वह उतना अधिक अंकित नहीं है। राम से भी अधिक जो उत्कर्ष उनमें दिखाई पड़ता है वह बहुत कुछ चित्रण की अपूर्णता के कारण। उतनी अधिक परिस्थितियों में राम लक्ष्मण का चरित्र दिखाया गया है, पर इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जिस परिस्थिति में भरत दिखाए गए हैं उससे बढ़कर शील की कसौटी हो ही नहीं सकती। अनंत शक्ति के साथ धीरता, गंभीरता और कोमलता राम का प्रधान लक्षण है, यही उनका रामत्व है। अपनी शक्ति की स्वानुभूति ही उस उत्साह का मूल है जिससे बड़े बड़े दुस्साध्य कर्म होते हैं। बाल्यावस्था में ही जिस प्रसन्नता के साथ दोनों भाइयों ने घर छोड़ा और विश्वामित्र के साथ बाहर रहकर अस्त्र शिक्षा प्राप्त की तथा विघ्नकारी विकट राक्षसों पर पहले पहल अपना बल आजमाया, वह उस उल्लास और साहस का सूचक है जिसे उत्साह कहते हैं। छोटी अवस्था में ही ऐसे विकट प्रवास के लिए जिनकी धड़क खुलती हमने देखी, उन्हीं को पीछे 14 वर्ष वन में रहकर अनेक कष्टों का सामना करते हुए जगत को शुद्ध करने वाले कुंभकर्ण और रावण जैसे राक्षसों को मारते हुए हम देखते हैं। इस प्रकार जिन परिस्थितियों के बीच वीर जीवन का विकास होता है उनकी परंपरा का निर्वाह हम क्रम से रामचरितमानस में देखते हैं। राम और लक्ष्मण ये दो अद्वितीय वीर हम उस समय पृथ्वी पर पाते हैं। वीरता की दृष्टि से हम कोई भेद दोनों पात्रों में नहीं कर सकते, पर सीता के स्वयंवर में दोनों भाइयों के स्वभाव में जो पार्थक्य दिखाई पड़ा उसका निर्वाह हम अंत तक पाते हैं। जनक के परिताप वचन पर उग्रता और परशुराम की बातों के उत्तर में जो चपलता हम लक्ष्मण में देखते हैं उसे हम बराबर अवसर पर देखते चले जाते हैं। इस प्रकार राम की जो धीरता और गंभीरता हम परशुराम के साथ बातचीत करने में देखते हैं वह बराबर आगे आने वाले प्रसंगों में हम देखते जाते हैं। इतना देखकर हम कहते हैं कि राम का स्वभाव धीर और गंभीर था और लक्ष्मण का उग्र और चपल। धीर, गंभीर और सुशील अंतःकरण की बड़ी भारी विशेषता यह होती है कि वह दूसरे बुरे भाव का आरोप जल्दी नहीं कर सकता। सारे अवध वासियों को लेकर भरत और चित्रकूट की ओर आते देख लक्ष्मण कहते हैं, कुटिल कुबंध को अवसर ताकी, जानी राम वनवास एकाकी, करी कुमंत्र मन साजी समाजू, आए करई अकंटक राजू। और तुरंत इस अनुमान पर उनकी त्योरी चढ़ जाती है, जिम करी निकर दलई मृग राजू, ले लपेटी लवार जिम बाजू। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरी निपात खेता। पर राम के मन में भरत के प्रति ऐसा संदेह होता ही नहीं है, अपनी सुशीलता के बल पर उन्हें उनकी सुशीलता पर पूरा विश्वास है। वे तुरंत समझाते हैं, सुनहु लशन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न दीसा, भरत ही होई राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। सुमंत्र जब राम लक्ष्मण को विदा कराकर अयोध्या लौटने लगते हैं तब रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम भरा संदेशा पिता से कहने को कहते हैं, जिसमें कहीं से खिन्नता या उदासीनता का लेश नहीं है। वे सारथी को बहुत समझा कर कहते हैं, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव अपितु सोच हमारे। यह कहना लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता। जिस निष्ठुर पिता ने स्त्री के कहने में आकर वनवास दिया उसे भला सोच क्या होगा। पिता के व्यवहार की कठोरता के सामने लक्ष्मण का ध्यान उनके सत्य पालन और परवशता की ओर न गया। उनकी वृत्ति इतनी धीर और संयत न थी कि वे इतनी दूर तक सोचने जाते। पिता के प्रति कुछ कठोर वचन वे कहने लगे, परंतु राम ने उन्हें रोका और सारथी से बहुत विनती की कि लक्ष्मण की ये बातें पिता से न कहना। पुनि कछु लशन कही कटु बानी, प्रभु बरजेउ बड़ अनुचित जानी, सकुची राम निज शपथ दिवाई, लशन संदेश कही जने जाई। यह सकुची शब्द कितना भाव गर्भित है। यह कवि की सूक्ष्म अंतर्दृष्टि सूचित करता है। मनुष्य का जीवन सामाजिक है, वह समाजबद्ध प्राणी है, उसे अपने ही आचरण पर लज्जा या संकोच नहीं होता, अपने कुटुंबी इष्ट मित्र या साथी के भद्दे आचरण पर भी होता है। पुत्र की करतूत सुनकर पिता का सिर नीचा होता है, भाई की करतूत सुनकर भाई का। इस बात का अनुभव तो हम बराबर करते हैं कि हमारा साथी यदि हमारे सामने किसी से बातचीत करते समय भद्दे या अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है तो हमें लज्जा मालूम होती है। यह संकोच राम की सुशीलता और लोक मर्यादा का भाव व्यंजित करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम का चित्र ऐसे ही कवि के हाथ में पढ़ने योग्य था। सुमंत्र ने अयोध्या लौटकर राजा से लक्ष्मण की कही हुई बातें तो न कही, पर इस घटना का उल्लेख बिना किए उससे न रहा गया। क्यों, क्या लक्ष्मण से उनसे कुछ शत्रुता थी? नहीं, राम के शील का जो अद्भुत उत्कर्ष उन्होंने देखा उसे वह हृदय में न रख सके। सुशीलता के मनोहर दृश्य का प्रभाव अंतःकरण पर ऐसा ही पड़ता है। सुमंत को राम की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने का दोष अपने ऊपर लेना कबूल हुआ, पर उस शील सौंदर्य की झलक अपने ही तक वह न रख सका। दशरथ को भी उन्होंने दिखाया। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस अंतिम झलक ने राजा को और भी उस वस्तु के पास पहुंचा दिया होगा जो आगे चलकर दिखाई गई है। इसे कहते हैं घटना का सूक्ष्म क्रम विन्यास। राम और लक्ष्मण के स्वभाव भेद का बस एक ही चित्र दिखा देना काफी होगा। समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र से विनय करते करते राम को 3 दिन बीत गए। तब जाकर राम को क्रोध आया और भय बिनु होई न प्रीति वाली नीति की ओर उनका ध्यान गया। वे बोले, लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सोखं बारिधि बिसिख कृशानु, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। जिसके बाण खींचते ही उठी उदधी उर अंतर ज्वाला, उसने पहले 3 दिनों तक हर प्रकार से विनय की। विनय की मर्यादा पूरी होते ही राम ने अपना अतुल पराक्रम प्रकट किया, जिसे देख लक्ष्मण को संतोष हुआ। विनय वाली नीति उन्हें पसंद न थी, एक बार दो बार कह देना ही वे काफी समझते थे। वाल्मीकि ने राम के वनवास की आज्ञा पर लक्ष्मण के महाक्रोध का वर्णन किया है, पर न जाने क्यों वहां तुलसीदास जी उसे बचा गए हैं। चित्रकूट में अपनी कुटिलता का अनुभव करती हुई कैकेयी से राम बराबर इसलिए मिलते हैं कि उसे यह निश्चय हो जाए कि उनके मन में इस कुटिलता का ध्यान कुछ भी नहीं है और उसकी ग्लानि दूर हो। वे बार बार उसके मन में यह बात जमाना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें उसका कुछ भी दोष नहीं है। अपने साथ बुराई करने वाले के हृदय को शांत और शीतल करने की चिंता राम के सिवा और किसकी हो सकती है। दूसरी बात यह ध्यान देने की है कि राम का यह शील प्रदर्शन उस समय हुआ जिस समय कैकेयी का अंतःकरण अपनी कुटिलता का पूर्ण अनुभव करने के कारण इतना द्रवीभूत हो गया था कि शील का संस्कार उस पर सब दिन के लिए जम सकता था। गोस्वामी जी के अनुसार हुआ भी ऐसा ही। कैकेयी जो लो जियत रही, तौलो बात मात सो मुंह भरी, भरत न भूली कही, मानी राम अधिक जननी ते, जननी हूँ घस न कही। इतने पर भी कहीं गांस रह सकती है। गार्हस्थ जीवन की दाम्पत्य भाव के भीतर सबसे मनोहर वस्तु है उसकी एक भार्या की मर्यादा। इसके कारण यहाँ से वहां तक जिस गौरवपूर्ण माधुर्य का प्रसार दिखाई देता है वह अनिर्वचनीय है। इसकी उपयोगिता का पक्ष दशरथ के चरित्र पर विचार करते समय दिखाया जाएगा। भक्तों को सबसे अधिक वश में करने वाला राम का गुण है शरणागत की रक्षा। अत्यंत प्राचीन काल से ही शरणागत की रक्षा करना भारतवर्ष में बड़ा भारी धर्म माना जाता है। इस विषय में भारत की प्रसिद्धि सारे सभ्य जगत में थी। सिकंदर से हारकर पारस का सम्राट दारा जब भाग रहा था तब उसके 3 साथी सरदारों ने विश्वासघात करके उसे मार डाला। उनमें से एक शकस्थान का क्षत्रप वर्जयंत था। जब सिकंदर ने दंड देने के लिए इन 3 विश्वासघातकों का पीछा किया तब वर्जयंत ने भारतवासियों के यहाँ आकर शरण ली और बच गया। प्राचीन यहूदियों के एक जत्थे का गांधार और दक्षिण में शरण पाना प्रसिद्ध है। इस्लाम की तलवार के सामने कुछ प्राचीन पारसी जब अपने आर्य धर्म की रक्षा के लिए भागे तब भारतवर्ष की ही ओर उनका ध्यान गया, क्योंकि शरणागत की रक्षा यहाँ प्राण देकर की जाती थी। अपनी हानि के भय से शरणागत का त्याग भारी पाप माना जाता है। शरणागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पाप मैं, तिनही बिलोकत हानि। शरणागत की रक्षा की चिंता रामचंद्र के हृदय से दारुण शोक के समय में भी दूर न हुई। सामने पड़े हुए लक्ष्मण को देखकर वे विलाप कर रहे हैं। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको, सुन सुग्रीव साचहु मोसन फेरियो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो तज्जो लशन सो भ्राता, गिरि कानन जयह शाखा मृग हो पुनि अनुज संघाती, वह कहा विभीषण की गति रही सोच फरिछाती। राम के चरित्र की इस उज्ज्वलता के बीच एक धब्बा भी दिखाई देता है, वह है बाली को छिपकर मारना। वाल्मीकि और तुलसीदास जी दोनों ने इस धब्बे पर सफेद रंग पोतने का प्रयत्न किया है, पर हमारे देखने में तो यह धब्बा ही संपूर्ण रामचरित को उच्च आदर्श के अनुरूप एक कल्पना मात्र समझे जाने से बचता है। यदि यह एक धब्बा न होता तो राम की कोई बात मनुष्य किसी न लगती और वे मनुष्यों के बीच अवतार लेकर भी मनुष्यों के काम के न होते। उनका चरित्र भी उपदेशक महात्माओं की केवल महत्व सूचक फुटकर बातों का संग्रह होता। मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति सूचित करने वाले संबद्ध काव्य का विषय न होता। यह धब्बा ही सूचित करता है कि ईश्वरावतार राम हमारे बीच हमारे भाई बंधु बनकर आए थे और हमारे ही समान सुख दुख भोग कर चले गए। वे ईश्वरता दिखाने नहीं आए थे, मनुष्यता दिखाने आए थे। भूल चूक या त्रुटि से सर्वथा रहित मनुष्यता कहाँ होती है? इसी एक धब्बे के कारण हम उन्हें मानव जीवन से तटस्थ समझते, तटस्थ क्या कुछ भी हटे हुए नहीं समझते हैं। अब थोड़ा भरत के लोक पावन निर्मल चरित्र की ओर ध्यान दीजिए। राम की वन यात्रा के पहले भरत के चरित्र की श्रृंखला संगठित करने वाली कोई बात हम नहीं पाते। ननिहाल से लौटने पर ही उनके शील स्वरूप का स्फुरण आरम्भ होता है। ननिहाल में जब दुःस्वप्न और बुरे शकुन होते हैं तब वे माता पिता और भाइयों का मंगल मनाते हैं। कैकेयी की कुचक्र में अणु मात्र योग के संदेह की जड़ यहीं से कट जाती है। कैकेयी के मुख से पिता के मरण का संवाद सुन वे शोक कर ही रहे हैं कि राम के वन गमन की बात सामने आती है, जिसके साथ अपना संबंध नाम मात्र का ही सही समझकर वे एकदम ठक हो जाते हैं। ऐसी बुरी बात के साथ संबंध जोड़ने वाली कैकेयी माता के रूप में नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर के लिए उसकी ओर से मातृभाव हट सा जाता है। ऐसा उज्जवल अंतःकरण ऐसी घोर कालिमा की छाया का स्पर्श तक सहन नहीं कर सकता। यह छाया किस प्रकार हटे इसी यत्न में वे लग जाते हैं। हृदय का यह संताप बिना शांतिशील समुद्र राम के सम्मुख हुए दूर नहीं हो सकता। वे चट विरह व्यथित पुरवासियों को लिए दिए चित्रकूट में जा पहुंचते हैं और अपना अंतःकरण भरी सभा में लोकादर्श राम के सम्मुख खोल कर रख देते हैं। उस आदर्श के भीतर उसकी निर्मलता देख वे शांत हो जाते हैं और जिस बात से धर्म की मर्यादा रक्षित रहे उसे करने की दृढ़ता प्राप्त कर लेते हैं। भरत ने इतना सब क्या लोक लज्जावश किया? नहीं, उनके हृदय में आत्मग्लानी थी, सच्चा संताप था। यदि ऐसा न होता तो अपनी माता कैकेयी के सामने वे दुख और शोभ न प्रकट करते। यह आत्मग्लानी ही उसकी सात्विक वृत्ति की गहनता का प्रमाण है। इस आत्मग्लानी के कारण का अनुसंधान करने पर हम उस तत्व तक पहुँचते हैं जिसकी प्रतिष्ठा रामायण का प्रधान लक्ष्य है। आत्मग्लानी अधिकतर अपने किसी बुरे कर्म को सोचकर होती है। भरत जी कोई बुरी बात अपने मन में लाए तक न थे, फिर यह आत्मग्लानी कैसी? यह ग्लानी अपने संबंध में लोक की बुरी धारणा के अनुमान मात्र से उन्हें हुई थी। लोग प्रायः कहा करते हैं कि अपना मन शुद्ध है तो संसार के कहने से क्या होता है। यह बात केवल साधना की एकांतिक दृष्टि से ठीक है, लोक संग्रह की दृष्टि से नहीं। आत्म पक्ष और लोक पक्ष दोनों का समन्वय रामचरित का लक्ष्य है। हमें अपनी अंतर्वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक रखनी चाहिए और अपने संबंध में लोक की धारणा भी अच्छी बनानी चाहिए। जिसका प्रभाव लोक पर न पड़े उसे मनुष्य का पूर्ण विकास नहीं कह सकते। यदि हम वस्तुतः सात्विकशील हैं पर लोक भ्रमवश या किसी और कारण हमें बुरा समझ रहे हैं तो हमारी सात्विकशीलता समाज के किसी उपयोग की नहीं। हम अपनी सात्विकशीलता अपने साथ लिए चाहे स्वर्ग का सुख भोगने चले जाएं पर अपने पीछे 10-5 दिन के लिए भी कोई शुभ प्रभाव न छोड़ जाएंगे। ऐसे एकांतिक जीवन का चित्रण जिसमें प्रभु विष्णुता न हो रामायण का लक्ष्य नहीं है। रामायण भरत ऐसे पूर्ण श्लोक को सामने करता है जिनके संबंध में राम कहते हैं, मिटही पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। जिन भरत को अपयश की इतनी ग्लानी हुई जिसके हृदय से धर्म प्रभाव कभी न हटा, उनके नाम के स्मरण से लोक में यश और परलोक में सुख दोनों क्यों न प्राप्त हों। भरत के हृदय का विश्लेषण करने पर हम उनमें लोक भीरुता, स्नेहार्द्रता, भक्ति और धर्म प्रवणता का मेल पाते हैं। राम के आश्रम पर जाकर उन्हें देखते ही भक्तिवश पा ही कहते हुए वे पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। सभा के बीच में जब वे अपने हृदय की बात निवेदन करने खड़े होते हैं तब भातृस्नेह उमड़ आता है। बाल्यावस्था की बातें आंखों के सामने आ जाती है। इतने में ग्लानि आ दबाती है और पूरी बात भी नहीं कह पाते हैं। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधियु पर काहे न काऊ, मो पर कृपा स्नेह बिसेखी, खलत खुनिस न कबहु देखी, शिशुपन न परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारेहु खेल जिता वही मोही, महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कहेउ न बैन, दर्शन त्रिषित न आज लगी प्रेम पियासे नैन, विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, यहो कहत मोही आजु न शोभा, अपनी समुझ साधु सचि कोभा, मातु मंद मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, परई की कोदव बालिग सुसाली, मुकृता प्रसव की संबुक ताली, बिन समुझे निज अध परिपाकू, जारे हूँ जाय जननी कही काकू, हृदय हे रिहारों सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामु, लागत मोहि नीक परिणामु। भरत को इस बात पर ग्लानी होती है कि मैं आप अच्छा बनकर माता को भला बुरा कहने गया। अपनी समुझी साधु सुचि को भा, जिस दिन भले आदमी पवित्र और सज्जन लोग जड़ और नीच नहीं साधु और सुचि माने, उसी की साधुता और शुचिता काम की है। इस ग्लानी के दुख से उद्धार पाने की आशा एक इसी बात से होती है कि गुरु और स्वामी वशिष्ठ तथा राम ऐसे ज्ञानी और सुशील हैं। कहने की आवश्यकता यह आशा ऐसे दृढ़ आधार पर थी कि पूर्ण रूप से फलवती हुई। भरत केवल लोक की दृष्टि से पवित्र ही न हुए, लोक को पवित्र करने वाले भी हुए। राम ने उन्हें धर्म का साक्षात स्वरूप स्थिर किया और स्पष्ट कह दिया कि भरत भूमि रह राउरी राखी। अब सत्य और प्रेम के विरोध में दोनों की एक साथ रक्षा करने वाले परम यशस्वी महाराज दशरथ को लीजिए। वे राम को वनवास देने में सत्य की रक्षा और प्रतिष्ठा का पालन हृदय पर पत्थर रखकर उमड़ते हुए स्नेह और वात्सल्य भाव को दबाकर करते हुए पाए जाते हैं। इसके उपरांत हम उन्हें स्नेह के निर्वाह में तत्पर और प्रेम की पराकाष्ठा को पहुंचाते हुए पाते हैं। सत्य की रक्षा उन्होंने प्रिय पुत्र को वनवास देकर और स्नेह की रक्षा प्राण देकर की। यही उनके चरित्र की विशेषता है, यही उनके जीवन का महत्व है। नियम और शील धर्म के दो अंग हैं। नियम का संबंध विवेक से है और शील का हृदय से। सत्य बोलना, प्रतिज्ञा का पालन करना नियम के अंतर्गत है। नियम के लिए आचरण ही देखा जाता है, हृदय का भाव नहीं देखा जाता। केवल नाम की इच्छा रखने वाला पाखंडी भी नियम का पालन कर सकता है और पूरी तरह कर सकता है, पर शील के लिए सात्विक हृदय चाहिए। कभी कभी ऐसी विकट स्थिति आ पड़ती है कि एक को राह देने से दूसरे का उल्लंघन अनिवार्य हो जाता है। किसी निरपराध को फांसी हुआ चाहती है। हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा झूठ बोल देने से उसकी रक्षा हो सकती है। प्रायः एक ओर तो दया हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरणा कर रही है, दूसरी ओर नियम हमें ऐसा करने से रोक रहा है। इतने भारी शील साधन के सामने तो हमें अवश्य नियम शिथिल कर देना पड़ता है, पर जहाँ शील पक्ष इतना ऊँचा नहीं है वहाँ उभय पक्ष की रक्षा का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। दशरथ के सामने दोनों पक्ष प्रायः समान थे, बल्कि यों कहिए कि नियम की ओर का पलड़ा कुछ झुकता हुआ था। एक ओर तो सत्य की रक्षा की, दूसरी ओर प्राण से भी अधिक प्रिय पुत्र का स्नेह। पर पुत्र वियोग का दुख दशरथ के ऊपर ही पड़ने वाला था। इससे अपने ऊपर पड़ने वाले दुख के डर से सत्य का त्याग उनसे न करते बना। उन्होंने सत्य की भी रक्षा की, फिर अपने ऊपर पड़ने वाले दुख की परमावस्था को पहुंचकर स्नेह की भी रक्षा की। इस प्रकार सत्य और स्नेह, नियम और शील दोनों की रक्षा हो गई। रामचंद्र जी भरत को समझाते हुए इस विषय को स्पष्ट करके कहते हैं, राखेउ राउ सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेउ प्रेम पनु लागी। शील और नियम आत्म पक्ष और लोक पक्ष के समन्वय द्वारा धर्म की यही सर्वतोमुख रक्षा रामायण का गूढ़ रहस्य है। यह धर्म के किसी अंग को नोच कर दिखाने वाला ग्रंथ नहीं है। यह देख कर बार बार प्रसन्नता होती है कि आर्य धर्म का सार संपूर्ण हिंदी कवियों में से एक ऐसे महात्मा के हाथ में पड़ा जिसमें उसके उद्घाटन की सामर्थ्य थी। देखिए किस प्रकार उन्होंने राम के मुख से उपर्युक्त विवेचन का सार चौपाइयों के दो चारणों में ही कहला दिया। रामायण की घटना के भीतर तो दशरथ का यह महत्व ही सामने आता है, पर कथोपकथन रूप में जो कवि कल्पित चित्रण है उसमें वाल्मीकि और तुलसीदास दोनों ने दशरथ की अंतर्वृत्ति का कुछ और भी आभास दिया है। विश्वामित्र जब बालक राम लक्ष्मण को मांगने लगे तब दशरथ ने देने में बहुत आगा पीछा किया। ये सब कुछ देने को तैयार थे पर पुत्रों को देना नहीं चाहते थे। वृद्धावस्था में पाए हुए पुत्रों पर इतना स्नेह स्वाभाविक ही था। वे मुनि से कहते हैं, चौथे पन पाए सुतचारी, विप्र बचन कहीं नहीं कहे उ बिचारी, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, बरबस देउ आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछ नाही, सौ मुनि देउ निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। इससे प्रकट होता है कि उनका वात्सल्य स्नेह ऐसा न था कि वे साधारण कारणवश उनकी प्रेरणा के विरुद्ध कुछ करने जाते। मुनि के साथ जो उन्होंने बालकों को कर दिया वह एक तो शाप के भय से, दूसरे उनकी अस्त्र शिक्षा की आशा से। उस वृद्धावस्था में वे अपनी छोटी रानी के वश में थे, यह उस घबराहट से प्रकट होता है जो कोप सुनकर उन्हें हुई। वे उसके पास जाकर कहते हैं, अनहित तोर प्रिया केई कीन्हा, केही दुई सिर केही जम चहलीन्हा, कहु केही रंग कही करहु नरेशु, कहु केही निपति निकासहु देशु, जानसि मोर सुभाउ बरोरु, मन तव आनन चंद चकोरु, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, प्राण पुत्र परिजन प्रजा सबको कैकेयी के वश में कहना स्वयं राजा का कैकेयी के वश में होना अभिव्यंजित करता है। एक स्त्री के कहने से किसी मनुष्य को यमराज के यहाँ भेजने के लिए, किसी दरिद्र को राजा बनाने के लिए, किसी राजा को देश से निकालने के लिए तैयार होना स्त्रैण होने का ही परिचय देना है। कैकेयी के सामने जाने पर न्याय और विवेक थोड़ी देर के लिए विश्राम ले लेते थे। वाल्मीकि जी ने भी इस प्रकार की बातें उस अवसर पर दशरथ से कहलाई हैं। दशरथ के हृदय की इस दुर्बलता के चित्र के भीतर प्रचलित दाम्पत्य विधान का वह दोष भी झलकता है जिसके पूर्ण परिहार का पथ आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने आचरण द्वारा प्रदर्शित किया। आधी उम्र तक विवाह पर विवाह करते जाने का परिणाम अंत में एक ऐसा बेमेल जोड़ा होता है जो सब मामलों का मेल बिगाड़ देता है और जीवन किरकिरा हो जाता है। एक में तो प्रेम रहता है, दूसरे में स्वार्थ, अतः एक तो दूसरे के वश में हो जाता है और दूसरा उसके वश के बाहर रहता है। एक तो प्रेम वश दूसरे के सुख संतोष के प्रयत्न में रहा करता है, दूसरा उसके सुख संतोष की वहीं तक परवाह करता है जहां तक उससे स्वार्थ साधन होता है। राम ने एक भार्या का मर्यादा द्वारा जिस प्रकार के अपूर्व माधुर्य और सौंदर्य का विकास दिखाया, उसी प्रकार अपने पिता की परिस्थिति से भिन्न अपनी परिस्थिति भी लोक को दिखाई। कैकेयी ने एक बार दशरथ के साथ युद्ध स्थल में जाकर पहिए में उंगली लगाई थी और उसके बदले में दो वरदान लिए थे। तो सीता 14 वर्ष राम के साथ जंगलों पहाड़ों में मारी मारी फिरी और उस मारे मारे फिरने का ही उन्होंने अपने लिए बड़ा भारी वरदान समझा। अंत में जब राजधर्म की विकट समस्या सामने आती है तब हम राम को ठीक उसका उल्टा करने में समर्थ पाते हैं जो दशरथ ने कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए कहा था। दशरथ एकमात्र कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए किसी राजा को बिना अपराध देश से निकालने के लिए तैयार हुए थे, पर राम प्रजा को प्रसन्न करने के लिए बिना किसी अपराध के प्राणों से भी प्रिय सीता को निकालने को तैयार हुए। दशरथ अपनी स्त्री के कहने से किसी राजा तक को देश निकालते, पर राम ने एक धोबी के कहने से अपनी स्त्री को निकाल दिया। इतने पर भी सीता और राम में जो परस्पर गूढ़ प्रेम था उसमें कुछ भी अंतर न पड़ा। सीता ने स्वामी के व्यवहार का कारण राजधर्म की कठोरता ही समझा, यह नहीं समझा कि राम का प्रेम मेरे ऊपर कम हो गया। सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकृतियों के अनुसार चरित्र विभाग करने से दो प्रकार के चित्रण हम गोस्वामी जी में पाते हैं, आदर्श और सामान्य। आदर्श चित्रण के भीतर और तामस दोनों आते हैं। राजस को हम सामान्य चित्रण के भीतर ले सकते हैं। इस दृष्टि से सीता, राम, भरत, हनुमान और रावण आदर्श चित्रण के भीतर आएंगे और दशरथ, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव और कैकेयी सामान्य चित्रण के भीतर। आदर्श चित्रण में हम या तो यहाँ से वहां तक सात्विक वृत्ति का निर्वाह पाएंगे या तामस का। प्रकृति भेद सूचक अनेक रूपता उसमें न मिलेगी। सीता, राम, भरत, हनुमान ये सात्विक आदर्श हैं। रावण तामस आदर्श है। सात्विक आदर्शों का वर्णन हो चुका। हनुमान के संबंध में इतना समझ रखना आवश्यक है कि वे सेवक के आदर्श हैं। सेवक भाव का पूर्ण स्फुरण उनमें दिखाई पड़ता है। बिना किसी प्रकार के पूर्व परिचय के राम को देखते ही उनमें शील, सौंदर्य और शक्ति के साक्षात्कार मात्र पर मुग्ध होकर पहले पहल आत्मसमर्पण करने वाले भक्ति राशि हनुमान ही हैं। उनके मिलते ही मानव भक्ति के आश्रय और आलंबन दोनों पक्ष पूरे हो गए और भक्ति की पूर्ण स्थापना लोक में हो गई। इसी राम भक्ति के प्रभाव से हनुमान सब राम भक्तों की भक्ति के अधिकारी हुए। सेवक में जो गुण चाहिए सब हनुमान में लाकर इकट्ठे कर दिए गए हैं। सबसे आवश्यक बात तो यह है कि स्वामी के कार्यों के लिए, सब कुछ करने के लिए उनमें निरलसता और तत्परता हम हर समय पाते हैं। समुद्र के किनारे सब बंदर बैठ समुद्र पार करने की चिंता कर रहे थे। अंगद फिरने का संशय करके आगा पीछा कर ही रहे थे कि वे तट चट समुद्र लांग गए। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तब वैद्य को भी चट हनुमान ही लाए थे और औषधि के लिए भी पवन वेग से वे ही दौड़े। सेवक को अमानी होना चाहिए, प्रभु के कार्य साधन में जो उसे अपने मान अपमान का ध्यान न रखना चाहिए। अशोक वाटिका में से पकड़कर राक्षस उन्हें रावण के सामने ले जाते हैं। रावण उन्हें अनेक दुर्वाद कहकर हंसता है, इस पर उन्हें कुछ भी क्रोध नहीं आता। अंगद की तरह हों तब दसन तोरी बे लायक वे नहीं कहते हैं। ऐसा करने से प्रभु के कार्य में हानि हो सकती थी। अपने मान का ध्यान करके स्वामी का कार्य बिगाड़ना सेवक का कर्तव्य नहीं। वे रावण से साफ कहते हैं, मोहि न कछु बांधी कई लाजा, की न चहो निज प्रभु कर काजा। जिस प्रकार राम राम थे उसी प्रकार रावण रावण था। वह भगवान को उन ललकारने वालों में से था जिसकी ललकार पर उन्हें आना पड़ा था। बालकांड में गोस्वामी जी ने पहले उसके उन अत्याचारों का वर्णन करके जिनसे पीड़ित होकर दुनिया पनाह मांगती थी तब राम का अवतार होना कहा है। वह उन राक्षसों का सरदार था जो गांव जराते थे, चौपाये नष्ट करते थे, ऋषियों को यज्ञ नहीं करने देते थे, किसी की कोई अच्छी चीज देखते तो छीन ले जाते थे, और जिनके खाए हुए रोगों की हड्डियों से दक्षिण का जंगल भरा पड़ा था। चंगेज खान और नादिर शाह तो मानो लोगों का उसका कुछ अनुमान कराने के लिए आए थे। राम और रावण को चाहे अहूप मज्द और अहन मानव समझिए, चाहे खुदा और शैतान, फर्क इतना ही समझिए कि शैतान और खुदा की लड़ाई का मैदान इस दुनिया में जरा दूर पड़ता था और राम रावण की लड़ाई का मैदान यह दुनिया ही थी। ऐसे तामस आदर्श में धर्म के लेश का अनुसंधान निष्फल ही समझ पड़ेगा। यह हमारे यहाँ की पुरानी अक्ल के अनुसार धर्म के कुछ आधार बिना कोई प्रताप और ऐश्वर्य के साथ एक क्षण नहीं टिक सकता। रावण तो इतने दिनों तक पृथ्वी पर रहा, अतः उसमें धर्म का कोई न कोई अंग अवश्य था। वह अंग अवश्य था जिसे शक्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उसमें कष्ट सहिष्णुता थी, वह बड़ा भारी तपस्वी था, उसकी धीरता में भी कोई संदेह नहीं है। भाई पुत्र जितने कुटुंबी थे सबके मारे जाने पर भी वह उसी उत्साह के साथ लड़ता रहा। अब रहे धर्म के सत्य आदि और अंग जो किसी की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, उनका पालन राक्षसों के बीच वह अवश्य करता रहा होगा। उसके बिना राक्षस कुल रह कैसे सकता था। पर धर्म का पूर्ण भाव लोक व्यापकत्व में है। यूं तो चोर और डाकू भी अपने दल के भीतर परस्पर के व्यवहार में धर्म बनाए रखते हैं। लोक धर्म वह है जिसके आचरण से पहले तो किसी को दुख न पहुंचे, यदि पहुंचे भी तो विरुद्ध आचरण करने से जितने लोगों को पहुंचता है उससे कम लोगों को। सारांश यह कि रावण में केवल अपने लिए और अपने दल के लिए शक्ति अर्जित करने भर को धर्म था, समाज में उसकी शक्ति का सदुपयोग करने वाला धर्म नहीं था। रावण पंडित था, तपस्वी था, राजनीति कुशल था, वीर था, धीर था, पर सब गुणों का उसने दुरुपयोग किया। उसके मरने पर उसका तेज राम के मुख में समा गया। सत्य से निकलकर जो शक्ति असत रूप हो गई थी वह सत में विलीन हो गई। वह सामान्य चित्रण लीजिए, राम के साथ लक्ष्मण का शील निरूपण कुछ हो चुका है। यहाँ केवल यह कहना कि उनकी उग्रता ऐसी न थी जो करुण और दया के गहरे अवसरों पर भी कोमलता या आर्द्रता न आने दे। सीता को जब वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़ने गए थे तब वे करुण भाव में मग्न थे, उनके मुंह से कोई बात न निकली थी। वे राम के बड़े भारी आज्ञाकारी थे, वे अपने हृदय के वेग को सह कर भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। क्रोध उन्हें कटु वचन के लिए उभारता था, पर राम का रुख देखते ही वे चुप हो जाते थे। सीता के वनवास की कठोर आज्ञा राम के मुख से सुनते ही वे सूख गए, करुणा से विवल हो गए। आज्ञाकारिता के लिए वे आदर्श हुए, पर वह नियम भी ऐसे अवसरों पर उन्होंने शिथिल कर दिया जब आज्ञा के पालन में उन्होंने अधिक हानि देखी और उल्लंघन का परिणाम केवल अपने ही ऊपर देखा। इन सब बातों के विचार से उनका चरित्र सामान्य के भीतर ही रहा। गृह नीति की दृष्टि से विभीषण शत्रु से मिलकर अपने भाई और कुल का नाश करने वाले दिखाई पड़ते हैं, पर और विस्तीर्ण क्षेत्र के भीतर लेकर देखने से उनके इस रूप की कलुषता प्रायः नहीं के बराबर हो जाती है। गोस्वामी जी ने इसी विस्तृत दृष्टि से उनके चरित्र का चित्रण किया है। विभीषण राम भक्त थे, अर्थात सात्विक गुणों पर श्रद्धा रखने वाले थे। वे राम के लोक विशुद्ध शील शक्ति और सौंदर्य पर मुग्ध थे। भाई के राज्य के लोभ के कारण वे राम से नहीं मिले थे। इस बात का निश्चय उनके बार बार तिरस्कृत होने पर भी रावण को समझाने जाने से हो जाता है। यदि उन्हें राज्य का लोभ होता तो वे एक ओर तो रावण को युद्ध के लिए उत्तेजित करते, दूसरी ओर भीतर से शत्रु की सहायता करते। पर वे रावण की लात खाकर खुल्लम खुल्ला राम की शरण में यह कहते हुए गए, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जनी खोरी। लोभवश न सही शायद विभीषण भाई के व्यवहार से रूठकर क्रोधवश राम से जा मिले हों। इस संदेह का निवारण रावण के लात मारने पर विभीषण का कुछ भी क्रोध न करना दिखाकर गोस्वामी जी ने किया है। लात मारने पर विभीषण इतना ही कहते हैं, तुम भी तो सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। इस स्थल पर गोस्वामी जी का चरित्र निर्वाह कौशल झलकता है। यदि यहाँ थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती, विभीषण क्रोध करते हुए दिखा दिए जाते, तो जिस रूप में विभीषण का चरित्र यह दिखलाना चाहते थे वह बाधित हो जाता। अधिकतर यही समझा जाता कि क्रोध के आवेग में विभीषण ने रावण का साथ छोड़ा। कवि ने विभीषण को साधु प्रकृति का बनाया है। हरी हुई सीता को लौटाने के बदले रावण का राम से लड़ने के लिए तैयार होना असाधुता की चरम सीमा थी, जिसे विभीषण की साधुता न सह सकी। गोस्वामी जी का पक्ष यह है, विभीषण की साधुता औसत दर्जे की थी। वह इतनी बड़ी नहीं थी कि राम द्वारा दिए हुए भाई के राज्य की ओर से ये उदासीनता प्रकट करती। सुग्रीव का चरित्र तो और भी औसत दर्जे का है, न उनकी भलाई ही किसी भारी हद तक पहुंची हुई दिखाई देती है, न बुराई ही। राम के साथ उन्होंने मैत्री की और राम का कुछ कार्य साधन करने के पहले ही बड़े भाई का राज्य पाया, पर जैसा कि साधारणतः मनुष्य का स्वभाव होता है, ये सुख विलास में फंसकर राम का कार्य भूल गए। जब हनुमान ने जताया तब वे घबराए और अपने कर्तव्य में दत्तचित्त हुए। अब तक जिस चित्रण का वर्णन हुआ वह एक व्यक्ति का चित्रण है, इसी प्रकार किसी समुदाय विशेष की प्रकृति का भी चित्रण होता है, जैसे स्त्रियों की प्रकृति का, बालकों की प्रकृति का। स्त्रियों की प्रकृति की जैसी तद्रूप छाया हम मानस के अयोध्या कांड में देखते हैं, वैसी छाया के प्रदर्शन का प्रयत्न तक हम और किसी हिंदी कवि में नहीं पाते। नीची श्रेणी की स्त्रियों के सामने बहुत कम प्रकार के विषय आते हैं। मनुष्य का मन ऐसी वस्तु है कि अपनी प्रवृत्ति के अनुसार लगे रहने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, वह खाली नहीं रह सकता। इससे ये अपने राग द्वेष के अनेक आधार यो ही बिना कारण ढूंढकर खड़ा करती रहती हैं। यदि ये चार आदमियों के बीच रख दी जाए तो हम बहुत थोड़े दिनों में देखेंगे कि कुछ तो उनके अनुराग के पात्र हो गए हैं और कुछ द्वेष के। मूर्ख स्त्रियों की यह विशेषता ध्यान देने योग्य है। अपने लिए राग और द्वेष के पात्र चुन लेने पर ये अपने वाग विलास और भाव परिपाक के लिए सहयोगी ढूंढती हैं। मंथरा का इसी अवस्था में हम पहले दर्शन पाते हैं। न जाने उसे क्यों कौशल्या अच्छी नहीं लगती, कैकेयी अच्छी लगती है। राम के अभिषेक की तैयारी देखकर वह कुड़ जाती है और मुंह लटकाए कैकेयी के पास खड़ी होती है। कैकेयी को उसके अनुराग का पता चाहे रहा हो पर अभी तक के द्वेष का पता बिल्कुल नहीं है। वह मुंह लटकाने का कारण पूछती है, तब उतरु देई न लेई उसासु, नारी चरित करी ढा रही आंसू, हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे, तबहु न बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापनी। उसकी इस मुद्रा से प्रकट होता है कि उसने अपने द्वेष का आभास इसके पहले कैकेयी को नहीं दिया था, यदि दिया भी रहा होगा तो बहुत कम। जल्दी उत्तर न देने से यह सूचित होता है कि जो बात वह कहना चाहता है वह कैकेयी के लिए बिल्कुल नहीं है, अतः उसे सहसा नहीं कह सकती। किस ढंग से कहे यह सोचने में उसे कुछ काल लग जाता है। इसके अतिरिक्त किसी के सामने अब तक न प्रकट किए गए दुख के वेग का भार भी दबाए हुए है। इतने में गाल बड़ तोरे इस वाक्य से जी की बात धीरे धीरे बाहर करने का एक रास्ता निकलता है। वह अपनी वही मुद्रा कायम रखती हुई कहती है, कत सिख देई हमहि को माई, गाल करब केही कर बल पाई, किसका बल पाकर गाल करूंगी। इसका मतलब यही है कि मुझे एक तुम्हारा ही बल ठहरा। मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम मुझे चाहती हो, सो मैं देखती हूँ कि तुम्हारे यहाँ कोई गिनती ही नहीं है। क्रोध द्वेष आदि के उद्गार को इस प्रकार क्रम क्रम से निकालने की पटुता स्त्रियों में स्वाभाविक होती है, क्योंकि पुरुषों के दबाव में रहने के कारण तथा अधिक लज्जा संकोच के कारण ऐसे भावों के वेग को एक बार की निकालने का अवसर उन्हें कम मिलता है। रानी पूछती है कि सब लोग कुशल से तो हैं। इसका उत्तर उसी प्रणाली का अनुसरण करती हुई वह देती है, राम ही छाणी कुशल के ही आजू, जिन्हीं जने सुदेई युवराजू, भव कौशली ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन।